यशोदानन्दन जय ब्रज जन जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय भगवान की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सह गण रघुनाथान्वितम् तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं नदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. సభీ భక్తోం కా స్వాగత్ హై హమారే మంథన్ కార్యక్రమ మే. హాల్ హీ మే రాధానాథ్ మహారాజ్ యహాన్ పర్ జబ్ ఆయే థే తో మైనే ఉన్హే సూచిత్ కియా థా కి హర్ ఏకాదశి హమ్ యే మంథన్ కార్యక్రమ శురూ కియే హై ఔర్ విశేష రూప్ సే ఆప్కే దియే హువే బ్రహ్మచారియో కో 10 उपदेश उन पर हम चर्चा कर रहे हैं. तो महाराज पूछ रहे थे विच इंस्ट्रक्शंस डिड आई गिव. जब मैंने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें वो याद आ गया, क्योंकि उन्होंने न केवल ये 10 उपदेश दिए थे बल्कि इस पर प्रवचन भी उन्होंने किया था. पहले ये 10 उपदेश ईमेल के द्वारा महाराज ने भेजे थे, जब दयामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज वो जब चौपाटी के टेंपल प्रेसिडेंट थे तो उनको महाराज ने ईमेल के द्वारा ये 10 इंस्ट्रक्शंस भेजे थे. और फिर हाल ही में महाराज ने इन 10 उपदेशों के ऊपर प्रवचन भी दिया था. तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं महाराज के उन प्रवचनों पर आधारित है. तो मैं पूछा महाराज से कि श्री राधा मदन गोपाल जी को तो आपने यहां पर प्रतिष्ठित कर दिया, तो अब कुछ विशेष आदेश. तो महाराज ने कहा कि भगवान श्री मदन गोपाल जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता एक ऑफरिंग से होती है. जैसे हम 6 ऑफरिंग करते हैं, 6 आरती करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रसन्न वो होते हैं भक्तों के ऑफरिंग्स. व्हेन डिवोटीज ऑफर देमसेल्व्स, क्योंकि महाराज बता रहे थे कि वो हमारे राजभोग मंगल भोग खीर रबड़ी इनके भूखे नहीं इतना. और महाराज ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा. उन्होंने कहा कि श्री राधा मदन गोपाल जी नासिक में आए हैं, आपके मंदिर में आए हैं, केवल ये जो खाद्य भोग है उसे खाने के लिए नहीं, क्योंकि वो सब तो उनको आध्यात्मिक संसार में बहुत उत्कृष्ट दर्जे का मिल रहा है, तो वो ये सब खाने के लिए नासिक में नहीं आएंगे. वो यहां पर आए हैं ये देखने के लिए कि उनके जो भक्त हैं वो अपने आप को कितना ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक संसार तो पहुंच नहीं सकते इतनी जल्दी, और इसलिए हमारी स्वयं की ऑफरिंग अर्थात ऑफरिंग आर सेल्स वो स्वीकार करने के लिए वो यहां पर अवतरित हुए इस मंदिर में. महाराज ने कहा दैट इज द बेस्ट ऑफरिंग. और जैसे कि हमने वो एक स्लाइड आपको दिखाई थी, डिवोटीज आर लाइक राजभोग प्लेट, है ना, अलग अलग टेस्ट फ्लेवर्स के। तो महाराज ने वही चीज दोहराई कि ऐसा नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप से श्री श्री राधा मदन गोपाल जी को अपना समर्पण अर्पित करें। युग धर्म क्या है? सम्यक, सम्यक कीर्तन, भगवान के सम्यक रूप से कीर्ति का गान इंडिविजुअली। इसलिए वो कह रहे थे कि हमारा जो जप है, हमारी साधना का एक प्रमुख अंग है जप, तो जप वो इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्तिगत रूप से हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये युग धर्म नहीं है, माला के ऊपर जप ये युग धर्म नहीं है, युग धर्म है संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए जब हम एकत्रित होकर, एकत्रित आकर जब हम एक सामूहिक रूप से ये ऑफरिंग भगवान को प्रदर्शित करते हैं, तो वो भगवान की जो मुस्कान है, महाराज बोले इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, द स्माइल ऑफ मदन गोपाल जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तुम्हारा ने यहां तक कहा, इसका रिवर्स क्या होगा? हम हमारे कार्यों से ये तो ना करें कि उनकी स्माइल डिक्रीज हो, कम से कम अभी जो स्माइल है वो मेंटेन रखें। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, बढ़ाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और वो उन्हीं की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से हम कर पाएंगे। कम से कम वो भगवान की जो स्मित हंसी है उसे हम कम तो ना करें। और कम कैसे होगी? जब ये सामूहिक ऑफरिंग में कड़वाहट आती है, तब जाकर भगवान की वो स्मित हंसी धीरे धीरे वो क्रोध में परिणित हो सकती है। एक बार महाराज ब्रह्मचारियों को प्रवचन दे रहे थे चौपाटी में, और उन्होंने कहा कि जब आप गोपीनाथ जी का दर्शन करते हो तो उनकी जो सुंदर मुद्रा है, त्रिभंग उनकी जो मुद्रा है, बहुत सुंदर भगवान लगते हैं उस त्रिभंग मुद्रा में, अपना एक पैर ऐसे रखे, तो उन्होंने कहा कि उसके दो कारण हैं। एक कि उस त्रिभंग मुद्रा में वो गोपियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं उस मुद्रा में, और बद्ध जीवों को भी। ही इज मोस्ट अट्रैक्टिव इन दैट मुद्रा कृष्णा। और एक और कारण उस प्रकार की मुद्रा का ये है कि जब उनके पुजारी, सभी पुजारी हैं ना जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा मत समझो कि ऑल्टर में जो है वही केवल पुजारी हैं, हम सब भगवान के पुजारी हैं। तो वो जब कुछ सेवा अपराध करते हैं तो यही पैर से वो एक लात भी मारते हैं भगवान, इजी रहता है ना ये पोजीशन में। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें, हाँ हमारे डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड तो मेंटेन रखना ही है, लेकिन डीटी वर्शिप केवल वो पर्दे के पीछे नहीं है। ये मत समझना कि डीटी वर्शिप केवल पर्दे के पीछे हो रही है, हम ये चार दीवारी के अंदर और जहां कहीं पर भी हम हैं, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी वो बहुत बड़े साइज के हैं, सब देख रहे हो, जहां कहीं पर भी हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज का यही आदेश था, कोऑपरेशन, डिवोटीज कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, दैट इज द बेस्ट ऑफरिंग, सबसे बड़ी ऑफरिंग भगवान को प्रसन्न करने वाली वही है। तो हमने इस मुद्दे को लिया था। कलेक्टिव यूनिटी इज फार ग्रेटर देन इंडिविजुअल प्योरिटी। और फिर महाराज ने जो प्रवचन दिया इसके ऊपर, उसका इंट्रोडक्शन, इसकी भी चर्चा हमने की थी कि कृतज्ञता, समर्पण और सदाचार, कि ये तीन मुख्य अंग हैं कलेक्टिव यूनिटी के लिए, कृतज्ञता। और हमने तीसरे स्कंद से श्लोक लिया था कि कौन से ऐसे जीव होंगे कि जो कृतज्ञता नहीं दिखाएं। श्लोक में कहा गया है, तम सुख आराध्यम ऋजुभीर अनन्य शरणेर नृभी, कि यदि हम वास्तविक रूप में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की जो आराधना हम करें, जो चेष्टा हम कर रहे हैं, वो जो आराधना भगवान की कृतज्ञता के मूड में, उस भाव में हमें करनी है। और इसलिए यहां पर ये शब्द इस्तेमाल गया है रज्जु भी, जिसका अर्थ है रस्सी, संस्कृत में रज्जु जिसको कहते हैं रस्सी। तो ये कृतज्ञता की रस्सी ही हमें भगवान से बांधे रखेगी। ग्रैटिट्यूड, द रोप ऑफ ग्रैटिट्यूड कैन ओनली बाइंड अस द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। और इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सेवेत दुराराध्यम असाधु भी, द लॉर्ड कैन बी इजिली प्लीज्ड बाय स्पॉटलेस डिवोटीज हु रिजॉर्ट एक्सक्लूसिवली टू हिम फॉर प्रोटेक्शन, दो द अनराइचियस मैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू प्रोपिशिएट। कि केवल वो कृतज्ञता का भाव न रहे, वो एक चीज न रहने के वजह से हम चाहे कि कुछ भी करें भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए महाराज ने इसके ऊपर सर्वप्रथम जोर दिया। और हमने चर्चा की थी कि ज्ञान का एक मुख्य अंग है कृतज्ञता, क्योंकि इसमें अक्षर है ज्ञ, ज्ञान। याद है क्या कनेक्शन है नॉलेज का ग्रैटिट्यूड से? हाँ, मेमोरी, मेमोरी, स्मरण शक्ति। कि जैसे कि हमने उदाहरण दिया था परीक्षा का, परीक्षा में आपने जो कुछ पढ़ा है वो मेमोरी बैंक में जाता है, और जब तक वो स्मरण शक्ति है तब तक वो ज्ञान को आप पेपर पर उतार सकते। यदि वो स्मरण शक्ति चली गई तो चाहे कितना भी आप पढ़े कोई काम का नहीं। इसलिए नॉलेज इज डिपेंडेंट ऑन मेमोरी, एंड मेमोरी इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स फॉर बीइंग ग्रेटफुल। और हमने ये चार प्रश्न लिए थे, हु ऑल हैव हेल्प मी टू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हेन डिड दे हेल्प, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प, व्हाई डिड दे हेल्प। तो अब हम भक्तों से पूछना चाहेंगे एकत्रित कि आपके जीवन में आपको क्या क्या याद है, कौन कौन से ऐसे दृष्टांत प्रसंग आपको याद हैं कि जो आपको कृतज्ञता के भाव में डालते हैं, दैट पुट्स यू इन द मूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन कनेक्शन विद दीस फोर क्वेश्चंस। हम यहां पर इनके उत्तर इस प्रकार से नहीं देखना चाहते, हु ऑल हेल्प मी का अर्थ ये नहीं कि मैं सीढ़ी से गिर गया तो कोई नहीं, किसी ने मुझे हाथ देके उठा लिया, नहीं। हु ऑल हेल्प मी इन अ वेरी स्पिरिचुअल मैनर, बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिक तरीके से कौन कौन हैं जिन्होंने मेरी मदद की। हाँ, वी ऑल हैव टू शेयर, शेयर योर केयर। बोलिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर लेकर आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला प्रश्न का, लेकिन अगर हम एक एक कर कर लें तो बहुत हम सबको प्रेरणा मिलेगी। आप बोलना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो चल रहा है। हाँ,
युगाकार प्रभु और सुखदेव प्रभु, एक्चुअली जिन्होंने थोड़ा सा स्टडीज अपार्ट करके प्रोग्राम चालू किया था, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मेडिको टू come in devotion, and it is again the tougher job is to preach in medical school where the others are not devotees. तो वो दोनों के वजह से ही, not only me, मैं अकेला नहीं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैंने अभी भी जे में शायद 50 लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, and this is the situation since 11 years. तो ये दोनों ने पहले जो नींव रखी, तो personally मुझे देखा जाए तो उन्होंने, और ये हेल्प कैसी थी कि तब मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी कि ये हेल्प है, मुझे तो बर्डन लग रहा था, मैंने दैट इज द मेन थिंग
कि पीछे पड़ क्यों,
मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं ऐसा, और फिर भी मैंने आई एम रिलक्टेंट, मैं उनको ऐसा प्रभु जी आप कितना मदद कर रहे हैं ऐसा ना दिखाते हुए भी वो मैंने अनकंडीशनली मुझे हेल्प कर रहे थे कि उनका कोई मोटिव मुझे समझ, और एक्चुअली मैं इस संस्था में आने का कारण भी वही हुआ कि उनके उनका कोई मोटिव मुझे नहीं दिख रहा था कि वो क्यों मुझे हेल्प कर रहे, ऐसा भी कोई होता है ऐसा मेरे पहले विश्वास नहीं था मुझ में।
तो जैसे जैसे एक आपको इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगा, मैं जब शुरू में राधा गोपीनाथ मंदिर जाना शुरू किया तो उस समय प्रसाद का टाइमिंग 10:05 ऐसे था, सुबह 10 बजे फुल प्रसाद, शाम को 5 बजे फुल प्रसाद। तो अभी वहाँ पर मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, 9 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा हुआ, और फिर वहाँ पर डिवोटीज बोलते अभी आइए प्रसाद लीजिए, उससे पहले मैं पूछता कुछ सेवा, हाँ प्रसाद सेवा। तो अभी वो तो मुझे आदत नहीं थी, सुबह 10 बजे फुल प्रसाद, राइस दाल सब्जी चपाती फुल, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। अजीब किस प्रकार से अजीब लगता था, मुझे थोड़ा डर लगता था, ये लोग इतना क्यों खिला रहे, या बोल रहे मोटिव, तो मुझे डर लगता, और मैं पूछता था कुछ, हाँ यही सेवा प्रसाद सेवा, ये पहली बार सुना है, ये भी सेवा है, तो भर भर के खिला रहे हैं, ऊपर से महाप्रसाद भी ला ला के दे रहे हैं। तो अंदर एक प्रकार का, क्योंकि भौतिक संसार में हम इतने थपेड़े खा खा के आते हैं, इतने चीटर्स को मिल मिल के आते हैं, कि हमको लगता है यहाँ पर भी सब कोई धोखा करने के लिए आए हुए हैं लोग। तो ये अंदर ये डर रहता था कि क्या मोटिव क्या है, इतना क्यों खिला रहे लोग। तो फिर मैं कम कम खाता था, चेक करता पैसे वैसे हैं कि नहीं अंदर, कुछ बाद में बिल देंगे, तो आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ समय बाद मुझे शर्म आने लगी कि मैं केवल आ रहा हूँ यहाँ पे खा के जा रहा हूँ, तो मैं बाहर खा के फिर आता था मंदिर में, बोला नहीं 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 भूख नहीं भूख नहीं वगैरह। तो क्योंकि पहले मैंने एक दो बार ऐसे बोल दिया भूख नहीं, भूख तो लग रही थी और सब लोग खा रहे, मुझे लग रहा था कैसे मैं फोकट में खाऊं, इधर एक वो अहंकार भी था ना, फोकट में कैसे खाऊं, इतना मैं कमा रहा हूँ पैसा दे के खाऊंगा ना, और पैसा कोई ले नहीं रहा था। तो मैं वो भारतीय विद्या भवन के सामने एक सैंडविच का स्टॉल, वो सैंडविच खा के अंदर आता था मैं, वो सेम पॉइंट, सॉरी आप बोलिए और क्या बोल रहे थे? एक मिनट, ग्रीन हुआ।
हरे कृष्ण। और बाद में युगातार प्रभु ने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, क्योंकि पहली बार जो मुझे वो राधा गोपीनाथ लेके गए तो हमारे यहाँ से 315 नंबर की बस जाती थी, जे जे से नाना चौक।
अच्छी स्मरण शक्ति आप, बस नंबर भी याद।
तो हम दोनों आधा घंटा रुके थे, संडे प्रोग्राम था और हम दोनों आधा घंटा बस स्टॉप पे रुके थे, और दोनों भी स्टूडेंट थे, और अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी भी जल्दी गुजर गए थे। तो
आप और युगावतार,
मैं और युगावतार प्रभु थे साथ में। तो ही माने तो उन्होंने डिसाइड किया कि अरे अभी इसको तो लेके जाना है, ये वापिस हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि इस बार ही आऊँगा मैं संडे फिस्ट को। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि चलो अभी बस नहीं मिल रही तो टैक्सी करें, और उस टाइम टैक्सी माने एरोप्लेन का टिकट निकालना ऐसा 30 रुपीज़ ही स्पेंड दैट डे। एंड उन्होंने लिखा भी बाद में कि जब नासिक जरा डेवलप हो गया तो उन्होंने लिखा था कि मैंने जो 30 रुपया खर्चा किया इसके ऊपर, तो अभी ये कुछ तो प्रचार कर रहा है। तो दैट ऑल्सो, और एक भक्त मुझे याद आ रहा है कि ही इज नॉट इन इस्कॉन नाउ, इज गोविंद येरावार, हु इज माई क्लासमेट एक्चुअली, और वो मुझे जप करने को बिठाते थे हर टाइम, और ऐसे ही थोड़ा सा मैं मन में कर लूंगा वगैरह जो रेगुलर अपना रहता था, मैं बोलता था उसको नहीं 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 नहीं, उसका 16 माला सुबह हो जाता था फिर भी मेरे साथ 6 माला करता था, क्योंकि मैं करता था इसलिए। तो ये जो लोग हैं, और बाद में तो मैं जब थर्ड ईयर में गया तो फॉर्चुनेटली हमारा 4 थर्ड ईयर के लोगों का ऐसा ग्रुप बना कि हमने फिर मेडिसिन सर्जरी किसी भी एग्जाम के पहले भी सवा सवा घंटा बैठ के जब किया, और बाद में एग्जाम गए हैं। दूसरे जो भक्त है वो मेरे माताजी और पिताजी, कि जिन्होंने लिटरली कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया जब मैं इस्कॉन में जा रहा हूँ।
आप पहले आए इस्कॉन?
हाँ, मैं पहले आया इस्कॉन में।
अच्छा अच्छा।
और मैंने एक बार तो ऐसे में इस्कॉन में जा रहा हूँ, उनको पहले जब पता चला मैंने बताया उसके पहले, तो बाद में फिर हम तीनों बैठ के मैंने होटल में बैठ के हम बात कर रहे थे एक्चुअली कि क्या है कैसा है। तो उन्होंने पूरा पॉजिटिव मूड से लिया, और उन्होंने एक ही वाक्य मुझे बोला कि जन्म देना हमारा कर्तव्य है, तुझे कैसा क्या डेवलप होना है वो अभी तेरा कर्म निश्चित करेगा, तो हमें कुछ भी माने जो कुछ अच्छा है तू अच्छा ही कर रहा है तो मुझे हैप्पीनेस है। तो सिर्फ इतना बोल के रुके नहीं, वो मेरे से ज्यादा सेवा में लग गए नासिक में।
मैंने
कभी कभी तो ऐसा लगने लगा कि अरे कौन पहले आया है, बाद में महाराज भी मुझे उनका बेटा ऐसे समझ, हालांकि मेरा इनिशिएशन 4 साल पहले हुआ लेकिन उनका बेटा करके शायद महाराज मुझे याद करते होंगे। तो वो दोनों का ये सपोर्ट मिलने के बाद तो फिर कोई अड़चन आई नहीं। तो
जैसे आप पिताजी की बात कर रहे हो तो मुझे भी बचपन में, मैं वो स्टोरी अक्सर सुनाता हूँ, मेरे पिताजी ने वो एक स्लॉटर हाउस था, हम लोग मार्केट जाते थे, मैं छोटा सा ही था शायद आपके वो गौरांग से थोड़ा सा बड़ा, तो मैं पूछता था कि वो ये जो चमगादड़ लटके हुए रहते थे एक पेड़ पे बैट्स, मैं पूछता था इनको पनिशमेंट क्यों, किसने दिया ऐसा, क्योंकि बच्चों को ये लगता है ना कि उल्टा लटका मतलब पनिशमेंट। तो मेरे पिताजी दिखाते थे वो जो कसाई खाना, ओपन कसाई खाना, सब वो बकरे लटके हुए, तो मुझे दिखाते थे ये लोग जो इधर जानवरों को काट के मारते हैं इनको भगवान अगले जन्म में इस पेड़ पे लटकाते। तो मेरे दिमाग में इतना फिट बैठ गया वो कि मांस खाएगा तो ऐसे लटकाएगा भगवान। तो बड़ा हो गया, एयरफोर्स में गया, अभी मैं आराम से जस्टिफाई कर सकता था कि वो पिताजी ने ऐसे मुझे डराने के लिए बोला होगा, लेकिन वो इम्प्रेशन जो बचपन का पिताजी ने वो एक जो डर के द्वारा संस्कार डाल दिया अंदर, वो मुझे इतना बचा के रखा कि एयरफोर्स में ऐसे ऐसे व्यक्ति एयरफोर्स में मैंने देखे। एक बिहार का एक व्यक्ति था, पूरे गांव में मांसाहार नहीं था, इतना पायस उनका गांव था, पूरे गांव में मांसाहार नहीं। और वो जब भर्ती हुआ, वो मेरे बैच का सीनियर था, वो जब भर्ती हुआ तो मेस में 2 काउंटर्स थे, एक वेज नॉन वेज, तो वो लाइन में खड़ा हो गया, उसे पता नहीं दो काउंटर हैं, लाइन थी लंबी, तो लाइन में वो प्लेट लेके खड़ा हो गया। और उसको यहां तक आप विश्वास नहीं करोगे, उसको पता भी नहीं कि वो नॉनवेज की लाइन थी, और वो एक हफ्ते तक खाया रहा था उसको। ये व्यक्ति जिसने कभी नॉनवेज देखा तक नहीं अपने गांव में, और फिर वो इतना एडिक्ट हो गया कि वो जिंदगी भर छोड़ नहीं पाया। तो ये जैसे आप पिताजी के प्रति कृतज्ञता दिखा रहे हो, तो मेरे भी पिताजी, वो बचपन में, हालांकि कृष्ण भावना भावित इतने नहीं थे वो, लेकिन संस्कारी थे, ब्राह्मण परिवार में सब संस्कार था। तो ये जो एक बचपन का एक संस्कार मुझे बचाए रखा कि कभी भगवान की कृपा, उनकी कृपा रही कि कभी वो नियम कभी टूटा नहीं। और कुछ? ये सेशन लंबा चलेगा अपना, ये 4 क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना डिस्कशन?
शायद प्रभु जी, और बाकी सब तो मुझे अभी तो लगने लगा है कि पूरा कॉन्ग्रीगेशन भी एक हेल्प करता है अपने को, कि इमिडिएटली पता चलता है कि 2-3 दिन जप करने के लिए नहीं आओ, 2-4 प्रोग्राम मिस करो तो डाउन द हिल गाड़ी कैसे सटक जाती है वो समझता नहीं है, तो
बिना ब्रेक के।
बिना ब्रेक के। हाँ, तो इसके हिसाब से, और उसके आगे जाके मैं ये सोचता हूँ कि जो सिचुएशंस मेरे लाइफ में भौतिक साइड से भी आ रही है वो भी मुझे आध्यात्मिक, माने दे आर लाइक द एंडोर्समेंट्स ऑन व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एवरीथिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट वी हैव टू सी इट इन दैट वे, दैट्स इट।
गुड गुड, थैंक यू थैंक यू।
हरे कृष्ण।
और किसी का? हाँ
I will try to make it short.
You
Actually,
don't have to.
पहला
You don't have to make it short.
सबसे पहले मैं जब नासिक में आया था तब मुझे पकड़ के प्रोग्राम में बैठा था वृंदावन प्रसाद प्रभु ने, सो ही हेल्प मी एंड विथ हिज इंस्पिरेशन आई स्टार्टेड चैंटिंग वन राउंड। ही सेड आई सेड आई डोंट हैव टाइम, ही सेड यू ट्रैवल इन द बस, आई से यस, वहाँ पे चालू करो। सो वहाँ पे काउंटर पे मैंने चालू किया, देन माई वाइफ इज शी हेल्प मी टू मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 राउंड शुरू हुए। बाद में आई रिमेंबर कि आप हमारे घर आए थे प्रसाद के लिए, तब देन एवरीथिंग होने के बाद में जब आप जाने लगे दैट टाइम आई वॉज स्टैंडिंग एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मी, सो दैट टाइम यू आर लुकिंग एट मी, आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट यू, एंड देन आई थिंक यू आर थिंकिंग बैक आउट माइंड, एंड देन इस आप कितने राउंड करते हो, मैं बोला अभी बोलेंगे 8 राउंड करो। बट देन आपने सोचा और फिर बोले आप 4 राउंड करते हो, नियमित रूप से 4 राउंड करो। देन आई थॉट कि मैं 4 राउंड कहता तो कर रहा हूँ, अगर शिष्याष्टकम प्रभु बोलते थे कि 8 राउंड करो तो आई मस्ट हैव डन इट, सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। सो देन यू नो देन आई स्टार्टेड 8 राउंड्स फ्रॉम दैट डेट, ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी काफ़ी, आई मीन एक ही साल तक 8 राउंड चलते रहे। बाद में राजभक्ति माता जी, शी हेल्प मी, शी सर अभी कितना दिन आप यू नो रनवे पे भागोगे, टेक ऑफ भी करो, सो टेक यू नो स्टार्ट डूइंग 16 राउंड। सो देन आई स्टार्टेड 16 राउंड। सो दीज ऑल पीपल यू नो, वन मोर थिंग, दैट कलंदरी प्रभु के सौजन्य बेंगलोर में द प्रोग्राम होता था, आई वॉज एंजॉइंग दैट संकीर्तन, सो आई वुड लाइक टू थैंक टू द फैमिली ऑल्सो सो फॉर ऑल दिस थिंग, एंड दे ऑल हेल्प मी। लेटर ऑन यू नो परमेश्वरी प्रभु एक नर्सिंग खुद नर्सिंग जी को ऑफर करके एक कंठी लेके आए, एंड ही सेड कि जन्माष्टमी का अच्छा दिन है, और बोला कि शिष्याष्टकम प्रभु इनको कंठी पहनाओ, सो देन यू पुट मी दैट, सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और फिर वो उनकी भाषा में बोलते कि आपका आज गला काटने गए, सो दैट इज हाउ यू नो थैंकफुल टू देम ऑल्सो। एंड यस, सब डिवोटीज तो है ही है जिनके लिए, हाय गोविंदानंद प्रभु है हु हैज यू नो लिटरली पुट मी इन द डीटी, अपना शयन सेवा में लायक ही ना होते हुए भी अलाउ किया, जानकीनाथ प्रभु इज वेरी लविंग, तो ऑल मतलब जिनके नाम लो कम है सभी पीपल हैव हेल्प मी, एंड आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू।
तो प्रसाद के लिए कब बुला रहे
हो?
मुझे याद है प्रेम निधि प्रभु, हमारे बॉम्बे के ब्रह्मचारी, वो बता रहे थे कि उनके फादर को वो महाराज से मिलाने लाए, क्योंकि शुरू में वो जब ज्वाइन किए उनके फादर बहुत अगेंस्ट, एकलौता बेटा और बहुत वो बहुत बड़े धनवान उनके फादर, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स के ओनर, और ये पूना में इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद ब्रह्मचारी बन गया, फादर अगेंस्ट थे। तभी महाराज से मिलाने के लिए, मतलब अभी थोड़ा वो जो वॉल्यूम था उसका कम हो गया था उनके चिल्लाने का, अगेंस्ट होने का, तो अभी महाराज से मिलाने लाए तो महाराज ने एम्ब्रेस कर दिया उनको। तो आज तक किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ने उनको एम्ब्रेस नहीं किया था, तो उनको पता था कि ये बहुत बड़े इनके गुरु हैं, इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं, और एम्ब्रेस कर दिया तो तुरंत उनके स्पॉन्टेनियसली मुंह से निकल गया, महाराज आई चैंट वन राउंड, जैसे आप बोल तो आई चैंट वन राउंड। तो प्रेमनिधि प्रभु तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या बात है। तो फिर प्रेमनिधि प्रभु की सिस्टर की मैरिज थी, तो ये आए वो वेडिंग कार्ड लेके और महाराज से मिले, महाराज को वेडिंग कार्ड दिया, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, खाली देने के लिए आए थे। तो महाराज बोले, सो आई शुड कम ना, यू विल कम, व्हाई नॉट, आई विल कम। तो महाराज गए उनके घर पे और वापस एम्ब्रेस किया, वापस एम्ब्रेस किया, महाराज एल चैंट टू राउंड्स। सेकेंड टाइम एम्ब्रेस में दो माला, और फिर उनकी बेटी की शादी वगैरह हो गई, उसके बाद में फिर वो पूरे परिवार के साथ वापस महाराज से मिलने आए मंदिर। तो महाराज ने एज यूजुअल वापस एक एम्ब्रेस कर दिया, और फिर ये अपने बेटे प्रेमनिधि प्रभु को बोलते हैं, टेल योर महाराज नॉट टू एम्ब्रेस मी एनी मोर, आई कांट चैंट मोर देन टू राउंड्स। बोले बार बार मुझे एम्ब्रेस कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, माला करने की इतनी स्फूर्ति मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। फिर वो बोल दिया, महाराज आई चैंट फोर राउंड्स नॉट मोर देन दैट। तो होता है ये, मुझे याद है कि मुझे जब शुरू में माला करने के लिए कहा गया तो मैंने पूछा, क्योंकि मेरे बड़े भाई वो पहले इस्कॉन में आए, स्वरूप दामोदर प्रभु, तो हम लोग दोनों सब एक साथ ही करते थे, सब कुछ खेल कूद एक साथ, मस्तियां सब एक साथ की। अभी इस्कॉन में भी ये आ गए तो मेरे को लगा ये अकेला कैसे, मैं भी। तो वो जब उन्होंने मुझे माला दी करने के लिए तो मैंने पूछा, तुम कितने करते हो, कंपटीशन ना, मेरे को बताओ मत कि मैं कितना करूं, तुम कितना करते हो बताओ। बोला मैं तो 16 कर रहा हूँ। मैं थोड़ा फिगर देखा 16, तो फिर मैंने माला बाहर निकाली, देखो कितना है इसके अंदर। तो मैं काउंट करना शुरू किया, बोला नहीं 108 है। बोला कैसे पता, बोला नहीं वो सब 108 ही रहता है। बोला ये 16 बार ऐसे 108 × 16। तो वो चैलेंज ले लिया मैं, ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं फौजी आदमी हूँ, करके बताऊंगा। तो फिर समझ में आ गया कि आप कितने भी बड़े फौजी हो, चाहे कितनी भी वर्जिश आपने की हो, वो जो एक बार माला हाथ में आती है ना, वो सबसे बड़ा डंबल है वेट लिफ्टिंग, वो 16 माला पूरा करना। तो फिर अपना जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है 5 बजे मंगल आरती, उसके बाद में फिर सब जपा के लिए बैठते हैं, तो मैंने 8 माला डिसाइड किया था कि इतना लंबा जंप नहीं मारने का, पहले 8 माला। तो 8 माला किया, 8 माला हो गया, फिर उसके बाद में सभी तो अपना 16 माला कर रहे हैं, 2 घंटे का टाइम है, तो अब मैं करूँ क्या। मैं इधर गया, ऊपर गया, छत पे गया, इधर उधर थोड़ा देखने के लिए, सभी जगह पर सब लोग हरे कृष्णा चल रहा है, जहाँ पर भी जाओ राधा गोपीनाथ मंदिर में किसी भी कोने में जाओ सब माला ही कर रहे हैं। सोने होने की तो जगह है ही नहीं कहीं पे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी सभी ये टाइम पे और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, कहीं और जा भी नहीं सकता, तो चलो तोला माला ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं ना कि भक्तों के संघ के साथ, अगर अकेला होता मैं तो आठ के बाद ही, आठ के पहले ही गाड़ी अटक जाती, लेकिन इतने सारे सब एक साथ सोला कर रहे थे तो सोला माला उस प्रकार से शुरू। और बहुत से भक्तों के अनुभव ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी कभी इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी कैपेसिटी उनकी हो सकती है कि वो सोला माला भी कर सकते हैं। आपको बोला सत्यराज
हरे कृष्णा। सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिवोटीज, सबसे इम्पोर्टेंट तो जिन्होंने हेल्प किया वो खुद आप है, बिकॉज यू हैव ब्रॉट मदन गोपाल हियर इन नासिक एंड वी हैव रिसीव्ड ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व, परफेक्ट अवर लाइफ, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम आपके लिए रेस्ट ऑफ द इटर्निटी विल बी ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू यू फॉर दिस।
हरे कृष्णा।
जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में गया था बॉम्बे विजिटिया में, तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम यूडी सिटी में अटेंड किया था। तो जुहू से राम रूप्रभु आते थे तब 1996 में। तो जब फर्स्ट टाइम मैं उस रूम में घुसा, मतलब लेक्चर के लिए, तो हमारे यहाँ पर कॉलेज में वो पोस्टर लगाते थे वहाँ पे लेक्चर ऑन भगवद गीता, और फिर नीचे राम रूप दास ब्रैकेट में बी मैकेनिकल, और मैं भी मैकेनिकल साइड का था। तो जस्ट फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए दोस्त ने बोला, वो आसाराम बापू का ये था फॉलोअर, उसने बोला अरे नहीं जा बहुत अच्छा रहता है। वो मेरे साथ आया नहीं, मैं अकेले गया वहाँ पर, और अंदर जाके देखता हूँ तो अरे ये कौन लोग है, मतलब मैं थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा अटेंड वगैरह नहीं किया था तो थोड़ा आई वॉज अफ्रेड। फिर प्रोग्राम में हम लोग चार पाँच ही लोग थे, फिर लेक्चर हुआ उसके बाद कीर्तन हुआ, वो गदाधर प्रभु को लाए थे तो गदाधर प्रभु ने बहुत अच्छा कीर्तन किया था। फिर मैं बोला अभी इसके बाद तो कभी नहीं आएंगे प्रोग्राम को, मगर हम छह लोग थे और उन्होंने इतना ऑपुलेंट प्रसादम लाया था जुहू टेम्पल से, संदेश स्वीट समोसा वगैरह। प्रसाद खाने के बाद डिसाइड किया कि अभी प्रोग्राम में फिर नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। और फिर बाद में ऐसे हुआ कि मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया कि फिर मेरे रूम में ही लेक्चर होने लगा विजेटीआई में। तो फिर प्रभु जी ने पूरा सब धोती, फिर ऑल्टर का सेट, फिर बाद में आरती करने का सब कुछ लाके दिया। हम लोग सुबह मॉर्निंग में आरती करते थे।
डीटीज तो नहीं लाया ना?
नहीं नहीं नहीं, नहीं डीटीज नहीं, फोटो था प्रभु जी, राधा रास बिहारी का फोटो था। फिर बाद में मैंने डिसाइड किया था कि अभी प्याज लहसुन बंद करेंगे, मेस में नहीं खाएंगे। तो फिर तब गौर गोपाल प्रभु भी आते थे मेरे रूम में, दो प्रोग्राम्स होते थे, एक जुहू का और एक राधा गोपीनाथ का। तो मैंने टिफिन तो फिर राधा गोपीनाथ से लगाया था, मगर वो एक ही बार आता था मॉर्निंग में। तो जब रामरूप प्रभु जब लेक्चर रहता था उनका, तो जुहू से मेरे लिए टिफिन लाते थे, एवरी टाइम यूज टू ब्रिंग टिफिन फ्रॉम जुहू फॉर मी इवनिंग में। और मतलब ही हेल्प मी सो मच। मतलब फिर उसके बाद में जब मैं नासिक में आया, जॉब लगा महिंद्रा में, तो यहाँ पर सेंटर पे ही रहना स्टार्ट किया। तो परमहंस प्रभु आते थे बॉम्बे से, हफ्ते में तीन दिन आते थे। तो मुझे मतलब उनका जो एसोसिएशन है वो इतना, मतलब होली ने जपा के बारे में उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, मुझे अभी भी याद है कि जैसे जय बंगलो में जो हम रहते थे, तो मैं वहाँ पे अकेला ही रहता था। तो त्रिलोक प्रभु तब तक नहीं आए थे, तो कुकिंग करना, बाद में सब मॉपिंग करना, बर्तन धोना सब करना, फिर बाद में जॉब। तो बहुत बार तो मेरा जब शाम को ही होता था, तो परमहंस प्रभु ने देखा कि इसका जब हर बार शाम को ही होता है। तो एक दिन फिर जैसे वो आए थे, तो मुझे अभी भी याद है, मैं किचन में घुसा मॉर्निंग में कुकिंग करने के लिए, तो फिर भागते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लेके गए, बोले यहाँ पे बैठो, यू स्टार्ट चैंटिंग। फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, वहाँ पे कुकिंग किया एकदम फटाफट 45 मिनट्स में, राइस दाल सब्जी चपाती सब कुछ। फिर मुझे बाद में बुलाया, बोले तुम्हारा कितना जप हुआ, बोले अभी मुझे भी अभी भी याद है, आई टोल्ड हिम दैट 11 राउंड्स आई हैव चैंटेड। तो फिर उसके बाद प्रभु जी ने टिफिन जब मैं भर रहा था, तो खुद आए अपने हाथ से मेरा टिफिन बोला और लो बोला, और फिर देन आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। वैसे एक इंसिडेंस हुआ था, हम लोग जब कर रहे थे और तब गप्पे मार रहे थे रूम में, उज्जवल प्रभु थे मेरे साथ। तो प्रभु जी भागते हुए और बोले ये क्या कर रहे हो तुम, हरिनाम के वक्त तुम यू आर डिस्कसिंग, यू आर कमिटिंग ऑफेंस, मतलब नाम के प्रति अपराध कर रहे हो। तो मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है जिससे कि मन के ऊपर, मतलब मैंने उनको एक बार भी खड़े हुए चैंट करते हुए देखा नहीं, या फिर रात को कितना भी लेट हो एक बार भी, मतलब आई हैव नेवर सीन कि वो कभी जपा में सोए, और तब मुझे बहुत नींद आता था जपा में, तो सो लाइक दैट।
तो ये जो पहला प्रश्न है ना, हु ऑल हैव हेल्प मी इन कृष्ण कौन, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया राम रूप प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, परमहंस प्रभु, तो मुझे याद आया कि कोई गिनती नहीं है। अगर एक एक का कनेक्शन लगाते जाएं तो एंड का कृष्ण तक पहुंचेंगे हम, पूरे गुरु परंपरा। मतलब हुआ जैसे कि एक लेक्चर में राधानाथ महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। उन्होंने एनालाइज किया एक इस उदाहरण को। उदाहरण यह था कि आप रोज एक चपाती खाते हो, एक चपाती आपके प्लेट पे लाने के लिए कितने डिफरेंट सोर्सेज इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर, पूरा उसको एनालाइज किया कि उसके लिए आपको आटा चाहिए, आटा के लिए गेहूं चाहिए, गेहूं के लिए वो किसान उगा रहा है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, पूरा ट्रांसपोर्ट कंपनी एक रहता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग और अलग जगह पे होता है, उसका इतना बड़ा कंपनी होता है, उसको खड़े करने के लिए कितने लोग लगते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, तो उसका कंपनी अलग, उसको खड़े करने के लिए कितने लोग लगे, फिर बाद में वो गेहूँ आया उसको पीसा, उसकी चक्की, आटे की चक्की, उसको कितने लोग लगे बनाने के लिए। तो ऐसे पूरा कोई गिनती नहीं थी, एक चपाती हम खा रहे हैं उसके पीछे कितने लोग जुटे हुए हैं हमारे प्लेट में एक चपाती लाने के। तो महाराज बोले उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको कृष्ण भक्ति देने के लिए सारे गुरुजन हमारे संप्रदाय के जुट गए, हम एक बद्ध जीव को ये हरिनाम देने के लिए। तो ऐसे अगर हम लिस्ट निकालें तो इसका लिस्ट निकालना चाहिए। हम ज्यादातर लिस्ट निकालते किस किस ने मेरे साथ क्या क्या गलत किया, एक एक का बदला लूंगा, नहीं, हमको लिस्ट निकालना चाहिए कितनों ने। और कई बार हम वो लिस्ट निकालते उसमें भी वो हमारी बहुत मदद किए होंगे एक जमाने में, उसको हम भूल जाते हैं। तो ये जो हु ऑल हेल्प मी द एंटायर गुरु परंपरा इंक्लूडिंग ऑल द अवतार्स, भगवान के जितने अवतार हैं भौतिक संसार में, और कितने अलग अलग तरीके से भगवान अवतरित होते हैं, अपने नाम के रूप में, धाम के रूप में, भक्तों के रूप में, प्रसाद के रूप में, ग्रंथों के रूप में, अर्च्य विग्रह के रूप में, मंदिरों के रूप में, सब के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। When did they help me? ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। When? देखिए, जब हाँ, ये भी उदाहरण राधानाथ महाराज ने एक प्रवचन में दिया कि श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को मदद कब की, जब कोई उनकी मदद नहीं करने के लिए तैयार था। When no one came forward to help श्रील प्रभुपाद, that time all these Americans, Europeans helped श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हर समय वो टाइमिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। उन्होंने उदाहरण दिया, इमेजिन निर्जल एकादशी, निर्जल एकादशी का पारण टाइम सुबह का, पूरे 24 घंटा आपने गर्मी के मौसम में पानी का एक बूंद पिया नहीं, और फिर अब पारणा टाइम शुरू हो गया, और उस समय आपको कोई पानी ला के देता है, तो कितना वो टाइमिंग। हालांकि आपको उस व्यक्ति ने पानी बहुत पिलाया होगा पहले, लेकिन इतना आप कभी उसको याद नहीं रखे होंगे, लेकिन उस टाइमिंग के समय वो जब कुछ ला के देता है आपको, जब आपको बहुत भूख लगी तब जाके कोई आपको महाप्रसाद ला के देता है। कई बार हमारा पेट भरा होता है और फिर बैकड्रॉप गिर गया। तो हरे कृष्णा। कई बार मुझे लगता है कि प्रवचन वगैरह अभी अंदर से ही देना होगा मुझे कुछ समय के लिए। क्या पॉइंट बोल रहे थे? हाँ, टाइमिंग, थोड़ा टाइमिंग इधर अंदर गलत हो गया गिरने का उसका। तो व्हेन ऑल दे हैव हेल्प्ड अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार और श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में आए उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। देखिए इसका टाइमिंग देखिए, हमको लग रहा होगा अरे क्या विशेष टाइमिंग, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितने 84 लाख योनि में हम लोग भ्रमण कर रहे थे। तो देखो हमारा इस समय इस एज में जो हमारी उम्र है जिसमें हम समझ पा रहे हैं, उसके ही आसपास चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन प्रारंभ हुआ और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। तो सोचिए कि अगर पहले वो आ जाते सब कुछ कर लेते और बाद में, तो हमारे लिए टाइमिंग कितना परफेक्ट है। हम लोग जो भक्ति में आए हैं, बहुत से हम भक्ति में आए एकदम हमारी युवावस्था में, और अगर युवावस्था में नहीं भी आए तो हमारे कर्मों को देखते हुए भगवान ने जो योजना की है कि हाँ इस उम्र में इसे भक्ति के संपर्क में मुझे लाना है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो अपने आप कृतज्ञता का भाव आएगा कि भगवान का टाइमिंग हमारे जीवन में आने का कितना परफेक्ट था। और फिर व्हाट काइंड ऑफ हेल्प। अब जैसे मालती माता जी वो बता रही थी, श्रील प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर डिसाइपल, तो मालती माता जी बता रही थी कि ये मायापुर की बात है, और उस समय श्रील प्रभुपाद के जो वेस्टर्न फीमेल डिसाइपल्स के अगेंस्ट थे बहुत से गौड़िया वैष्णव, कि ये कैसे उनको ब्राह्मण दीक्षा दिला रहे हैं, ये सब म्लेच्छ यवन परिवार में पैदा हुए। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत से ऐसे उनके गुरु बंधु जो गौड़िया मठ के जो उनके अगेंस्ट थे, स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने जो फीमेल डिसाइपल्स को दीक्षा दी थी उसके वजह से, तो प्रभुपाद ने उनको लंच पे बुलाया। प्रभुपाद भी बहुत रेवोल्यूशनरी थे, उनको लंच पे बुलाया और मालती माता जी को बोला कि प्रसाद बनाओ। मालती माता जी बोले लेकिन ये लोग सब अगेंस्ट है, मैं एक फॉरेनर, मेरे हाथ का ये लोग खाए, नहीं नहीं बनाओ। और फिर मालती माता जी को बोला सर्विंग भी करो आके। तो ये सब बड़े बड़े सन्यासी बैठे हैं और मालती माता जी वो सर्विंग कर रही। तब श्रील प्रभुपाद ने इनको कहा, जो आए थे वो सारे गौड़िया मठ के सन्यासी, उनको कहा कि दिस मालती माई डिसाइपल, माई रिलेशनशिप विथ हर इज दैट शी कैन कट हर थ्रोट फॉर माई सर्विस एंड आई कैन डू द सेम फॉर हर। कि मेरी सेवा के लिए ये अपना गला भी काट सकती है और मैं भी वही कर सकता हूं इसके लिए। तो सारे जो खा रहे थे अचानक के हाथ कांपने लगे कि ऐसा स्टेटमेंट प्रभुपाद ने कहा है। कि कृपा वगैरह तो बहुत छोटा सा शब्द हो गया, यहां पर एक कृतज्ञता का भाव क्या होगा उस शिष्य के मन में। इसलिए मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु जो ओरिजिनल लंदन का प्रीचिंग इस्टेब्लिश जिन्होंने किया, तो ये लोग बता रहे थे कि उस समय लंदन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लंदन में कोई नामो निशान नहीं इस्कॉन का, इनके पास कुछ पैसे भी नहीं, और ये लोग अमेरिका से पहली बार अमेरिका से बाहर निकले। मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु, जानकी माता जी, मुकुंद नहीं गुरुदास प्रभु और जमुना माता जी और मुकुंद प्रभु जो मुकुंद महाराज बने और जानकी माता जी, तो ये तीन कपल जो गए, ये लोग बता रहे थे कि उस समय मालती माता जी की छोटी सी लड़की सरस्वती, तो ये लोग पता किस में रहते थे, रेफ्रिजरेटर का बॉक्स होता है ना फेंका हुआ, बॉक्स के अंदर, फ्रिज का जो बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर रहते थे, क्योंकि पैसे नहीं कोई रेंट पे कोई कुछ चीज लेकर, तो वहां रहते थे और वहां से हरिनाम करके प्रीचिंग शुरू किया इन्होंने। और वो बता रही थी मालती माता जी कि वो जो रेफ्रिजरेटर का बॉक्स, क्योंकि लंदन में इतनी ठंड पड़ती है वहां पर माइनस में और बर्फ गिरती है, तो उस ठंड में वो रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स, वो रेफ्रिजरेटर से ज्यादा ठंडा, वो बता रहे थे। ऐसे बॉक्स में रह के आज वेस्टर्न इस्कॉन का जो सबसे फ्लरिशिंग सेंटर है वो लंदन का है, और उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो कृतज्ञता का भाव, क्या कि श्रील प्रभुपाद वो आकर हमें क्या दिए हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट। इसलिए जब हम बोलते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु क्या हमको दिए, अगर हमको जैसे कि अभी जो हमारे सब प्राण प्रतिष्ठा विधि जो हमने की, उसमें मेरा एक रियलाइजेशन आ गया स्ट्रांगली, जो पहले नहीं आया था इतना। आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं होगा कि डीटी इंस्टॉलेशन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो एक एक इंग्रेडिएंट, वो एक एक इंग्रेडिएंट उस विधि में होना कितना जरूरी, और वो इंग्रेडिएंट को ढूंढना, जैसे कि एक इंग्रेडिएंट है गोरोचन, वो गाय के लिवर का एक इंग्रेडिएंट है, जो गाय नेचुरली मर जाती है उनका एक इंग्रेडिएंट है, तो वो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट वो होना चाहिए विधि के अंदर, और ऐसे बहुत से छोटे छोटे डिटेल्स। तो मैं सोच रहा था चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, हरिनाम दिया खाली उन्होंने युग धर्म, अगर डीटी वर्शिप दे देते थे ना ओरिजिनल युग धर्म डीटी वर्शिप जो द्वापर युग में, इसलिए ये जो अभी हम लोग डीटी वर्शिप कर रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद ने कहा आई एम नॉट गिवन यू द एंटायर प्रोसीजर, यू विल फेंट अदरवाइज। प्रभुपाद ने कहा डीटी वर्शिप का एक्चुअल स्टैंडर्ड यदि मैं दूं तो आप बाथरूम से बाहर ही नहीं आओगे, क्योंकि बाथरूम से शुरू हो जाता है, क्या मंत्र उच्चारण करके स्नान करना पड़ता है, बोले बाथरूम से ही बाहर नहीं आ पाओगे, डीटी वर्शिप छोड़ दो। तो ये जो हमें राधा भाव, कभी सुना भी नहीं था हमने राधा रानी के विषय में, और राधा रानी का भाव चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जो लाकर दिए, तो जो ये प्रोडक्ट को यदि हम देखें कि क्या, और कीमत क्या मांग रहे हैं, इसकी कीमत क्या मांग रहे हैं। और इसलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे हेल्प, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनका मोटिवेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फलेसली वो दे रहे हैं, कि कुछ अपेक्षा नहीं रखें, केवल यही अपेक्षा है उनकी कि कैसे हम शुद्ध होकर। इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक वाक्य हमारे आंखों में आंसू ले आएगा, श्रील प्रभुपाद परपोट में लिखे फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर ऑल रीडर्स टू रीड, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है, जब ध्रुव महाराज की जो माता सुनीति वो भी भगवत धाम जाती है, क्यों? उन्होंने कोई ध्रुव महाराज की तरह तपस्या भक्ति नहीं की थी, उन्होंने तो केवल ध्रुव महाराज को कह दिया था कि जाओ वन में और भगवान विष्णु की आराधना करो। और ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन उन्हें मिला उनकी जो तपस्या भक्ति के वजह से, और फिर ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे हैं तो उनकी माता सुनीति ध्रुव महाराज से पहले जा रहे हैं, तो उस परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ ध्रुव महाराज हिज मदर वेंट बैक होम बैक टू गॉड हेड, सिमिलरली आई हैव होप्स that one of my disciples will also take me back home, back to Godhead. So, ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के फोर्थ कैंटो में लिखे हैं। सेल्फलेस, ये सारी जो इनके जो उत्तर है ना, ये चार प्रश्न के उत्तर, इस भौतिक संसार में ढूंढ कर भी आपको ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे, पैसे देकर भी नहीं मिलेंगे, ऐसे इंसान जो निस्वार्थ भाव से, श्रील प्रभुपाद जैसे निस्वार्थ भाव से एक ऐसा प्रोडक्ट ला कर दिए कि यदि उसका वैल्यू हम समझ लें। कई बार हमारे अंदर वो ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं आता है, क्योंकि वैल्यू नहीं समझते, हमको वैल्यू नहीं है कि क्या हमको दिया है। सोचिए, जन्म मृत्यु के चक्र से केवल उससे ही मुक्ति नहीं, केवल कोई ऊंचे लोकों में निवास ये भी नहीं, डायरेक्ट एंट्रेंस गोलोक वृंदावन। इसलिए डीटी वर्शिप, ये जो डीटी वर्शिप है इसमें जो भी हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि भगवान की आरती करना, देखना, भगवान की आरती में कीर्तन करना, ये सब एग्जैक्टली गोलोक वृंदावन में ये सब कुछ हो रहा है। मतलब हम लोग ये जो भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की आराधना कर रहे हैं, देख रहे हैं, एग्जैक्टली गोलोक वृंदावन में यही हो रहा है। जो कि बीच के जितने भी ऊंचे ऊंचे लोक है, जैसे ब्रह्म लोक हो या गंधर्व लोक, किन्नर लोक, वहां पर कुछ नहीं उनको ये सब सुविधा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ मिल जाता है ना एक साथ, तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये इतनी कृपा को हम कैसे अटा पाएंगे। हाउ कैन वी कंटेन सो मच हैप्पीनेस और सो मच मर्सी इन अवर लाइफ। इसलिए बार बार ये चार जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं शायद, और कोई हाथ उठाया था, कोई शेयर करना चाहता है, आप बोलना चाहेंगे, माइक देना।
Hare Krishna, Hare Krishna. I don't have words to express, but when I came to Nasik from Bombay, and I was just crying, and Gaur Gopal Prabhuji told me, you don't worry, when you will listen the lecture of the Shishastam Prabhuji, you will forget me. So you will not come to again Bombay to Radha Gopinath temple, you will say, think ki I will stay in Nasik only, and that is true. And I am very thankful to all the Matajis of Nasik. I was very worried when I came to Nasik temple, ke pata nahi kya hoga, kaise hoga. And it is true that all the Matajis are very nice, especially this Jyoti Mataji helped me a lot. Always I used to sit in just near to her only, because it was very difficult for me to read the Sanskrit words and other words, and I used to copy by her. And I am very grateful to the Kalantri Mataji who taught me how to do the tilak and all that. So but and whatever we had in our whole family changed totally due to the ISKCON only. So I am very grateful to the Srila Prabhupada who had made the ISKCON, especially for my son who changed all the six persons in our family. All the six, whole family, Prabhuji, you will not believe that we were 7 days eater. And now today we don't have even onion or the garlic at home. And everyone is doing the mala, even my mother-in-law, she is also doing four rounds and she is telling my son.
That is very special.
I am doing why she is doing, taake Anmol shaadi kare. And Anmol bol raha hai, aaji aap karte raho, main zarur shaadi karunga, magar mala karte raho. And I am very thankful to
Prabhu. Shaadi karne ke baad band na kar de mala.
नहीं नहीं वो बोल रहा है जितनी ज्यादा करेंगी मैं उतनी जल्दी शादी करूंगा तो शी इज एवरीवन एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गौर गोपाल प्रभु जी फॉर ऑल दिस एंड इट वाज ट्रू ही टोल्ड मी व्हेन यू विल लिसन टू शिशाष्टम प्रभु जी डोंट फॉरगेट मी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट रियली इट इज वेरी दैट वॉज वेरी ट्रू ही टोल्ड मी दिस वर्ड्स एंड एवरी टाइम व्हेन आई कम एवरी वेंसडे और एनी डे As soon as I entered the temple and in front of her face, I forget that, yes, he was telling me, you will forget me when you will listen to Shishashtram Prabhuji. And that is true. Hari Bol.
I am simply repeating what I have learned from Gaur Gopal Prabhu. So you are not forgetting him. Don't worry about me.
Hare Krishna. हम नासिक इस्कॉन में हमारे अक्षत की वजह से हमारे सन की वजह से मैं और मेरी वाइफ हम दोनों आए अक्षत हमारा अपने ये राहुल भगत प्रभु जो है उनके साथ में आया करता था एवरी वेनसडे फ्राइडे एंड संडे आने के बाद शाम को 6 बजे वो चला जाता था और मंदिर में जाता है मंदिर में जाने के बाद फिर प्रसाद खा के आता है और लेट 9 बजे तक समझ सकते थे 9 बजे आएगा 10 बजे 10:30 बजे तो ये 10:30 बजे आके फिर उनको अक्षत को घर पे छोड़ देते थे फिर एक बार हमने सोचा कि भाई नहीं ये काफ़ी समय जा रहा है तो कहाँ जाता है प्रसाद खा के भी आता है एक बार तो उसने बताया कि भाई फीस्ट में पाव भाजी भी खाया तो मैं बोला ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पाव भाजी मिलता है तो फिर
तो पाव भाजी ने आपको लेके
नहीं अक्षत इनके साथ में आता भगत प्रभु के साथ में तो फिर हम सोचे कि भाई वो जाता है तो हम भी जाके देखें कि क्या व्हाट इज देयर एक्चुअली तो फिर हम आए तो फिर हम भी विद इन वेरी नियर फ्यूचर यानी 8-15 दिन में या महीने के अंदर गीता कोर्स था फिर हमने दोनों ने तीनों मिलके एक गीता कोर्स किया और तो फिर हमारा स्कूल का जूना फ्रेंड कलंत्री प्रभु वो भी हमें 35 साल के बाद इधर ही मिले
इधर ही मिले
इस्कॉन में आप स्कूल छोड़ने के बाद सीधे इस्कॉन में ही मिले हम हरे कृष्ण
भूले भटके बहुत अच्छा
हरे कृष्णा प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू समराइज इन वन टाइप ऑफ एन आंसर इज फर्स्ट इज आई वुड लाइक टू पीपल हु हेल्प मी वाज फर्स्ट वाज माय ग्रैंडमदर Because of her, during our childhood, we were at least embedded with this knowledge. Or
grandmother means nani ki dadi.
My father's mother.
Dadi.
So she was the one who taught us through the stories about Mahabharata and Krishna and Rama and everybody. Mm-hmm. And then it was my parents who disciplined us into being at home before dusk and. At least washing our feet and then praying to the Lord mm-hmm. for at least 5-10 minutes and then going for studies. So these two, my parents as well as my grandmother, we are indebted. And later on in life, after the education and everything, it was one of my friend who was very influential in bringing me into this, not only ISKCON, but in earlier spiritual path, was my very good friend who also helped me in my education. Getting studying in the colleges and everything. Later, life flowed as normal, and it was my daughter-in-law who actually used to keep us calling every weekend and say that why you are not going to ISKCON Nasik temple. So she was very influential in pushing us into Nasik, and I was dreading, particularly both me and my wife used to dread coming to Dwarka area because of the congestion of traffic and such things. That was one of the reason, and not crossing that Bombay Naka this side. So that's, these were the two reasons. And both my son and daughter-in-law used to always talk on this subject whenever they used to call us, and her parents also. They were very influential because whenever we used to meet them, they used to take us to Bombay temple. So our thinking was when we go to meet somebody, we go to a hotel or anything, and they used to take us to temple. So
Govindas.
So they were very influential in introducing us to ISKCON. Later on, they literally pushed us into the Bhagavad Gita course which you conducted in the temple. It was a 6-day course but congested to 4 days, which we attended here. This actually changed our way of thinking. Actually, we were thinking what a 4-day seminar will be. In 4 days, why it is requiring such a big seminar? It can happen in 1 day. So 4-day seminar was a very heavy dose at that time. So, but that
you attended here in the temple?
In the temple.
English?
English. So that influenced us a lot, and then it was subsequently where it influenced in bringing so many other friends. We conducted a course in Kalantri's house, and his family was one of the family which without a blink of an eye gave permission to conduct a course in their premises. So I'm very grateful to them as a total Kalantri family. And later on I came to know that Vrindavan Das Prabhu and Ras Bhakti Mataji had conspired along with my daughter-in-law's parents to push us into ISKCON.
Really?
Later on I came to know this. And they were really influencing and supportive also when in the initial days. After the course actually it happened so that we were told that there will be some follow-up sessions, and we used to come every Friday here, both of us. Many a times only both of us used to be here.
Yeah, I remember.
And Friday actually Amara. Sometimes we were wondering if it is only two of us, why we should go. But actually Govindanand Prabhu and Jankidas Prabhu were very supportive. Even for two of us, they used to give a lecture. Maybe it is a 15 or 20 minutes, but they were very influential in keeping us bound with coming to the temple.
Mm-hmm.
So they played a very vital role in, and finally it is you who are very, we must thank you, and we are very grateful to you for keeping us
thank
here.
You.
Thank you, Prabhu.
ये मुझे याद आया कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो फ्राइडे लेक्चर में कई बार केवल ये और माताजी आते थे, मुझे याद है दोनों केवल, और जैसे बोल रहे हैं जानकीनाथ प्रभु गोविंदानंद प्रभु केवल दो लोगों के लिए लेक्चर लेते थे। तो स्वरूप दामोदर प्रभु मेरे बड़े भाई वो बताते थे कि वो कॉलेज कर रहे थे, लॉ कर रहे, लॉ कॉलेज में थे बॉम्बे में, और चर्चगेट में जो हॉस्टल है GCH कर हॉस्टल है वहाँ पर वो रहते थे हॉस्टल में। और देवामृत प्रभु उस समय वो चौपाटी मंदिर से वहाँ प्रीचिंग के लिए जाते थे। लेकिन आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा वो GCH हॉस्टल, वो मतलब न्यूयॉर्क के जो हिप्पी होते हैं ना उस प्रकार के लोग वहाँ पे रहते हैं, वो चर्चगेट में उस एरिया में, वो सिडनेम कॉलेज इन सबके एक साथ रहते हैं उधर। तो देवामृत प्रभु वो जाते थे प्रोग्राम के लिए प्रसाद लेके जाते थे, और जो कमरे में उनका प्रोग्राम वो खुद ही परमिशन निकाले थे, कोई नहीं आता था उनके प्रोग्राम में, वो खुद कमरा खोलते थे, पूरा कमरा साफ करते थे झाड़ू से, फिर बाद में सब बैठने के लिए सबके लिए वो चटाई वगैरह रखते थे, और फिर वो प्रसाद की बाल्टी उठाकर हर एक के कमरे में जाते थे। पहले वो वेट करते थे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, कोई नहीं आया, फिर बाल्टी उठा के एक एक के कमरे में जाएंगे और सबको महाप्रसाद दे के बोलेंगे कि यदि आपको प्रोग्राम अटेंड करने की इच्छा है तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप आ सकते हैं। और सब लोग प्रसाद लेके अपना जो भी कमरे में रॉक म्यूजिक सुनते थे। तो ऐसा उन्होंने हर हफ्ते किया, रिलीजियसली हर हफ्ते रिलीजियसली वो आते, रूम साफ करते, चटाई डालते, कोई नहीं आता, कमरे में जाके सबको प्रसाद बांट के हरे कृष्णा कह के फिर जाते। और ऐसे ही करते करते एक दिन, क्योंकि स्वरूप दामोदर प्रभु बताते थे कि वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो उनको पता ही नहीं था कैसे कोई प्रोग्राम भी चलता है। वो आते थे रात के 11 बजे जॉब करके, कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो इतने परेशान हो गए वो बंबई में वो जॉब करके कि एक दिन छोड़ दिया जॉब। तो जल्दी आ गए तो देखिए बैठे ये वहां पे बाहर रिसेप्शन बेंच पे बैठे, क्योंकि उस दिन वो रूम की चाबी नहीं मिल रही थी, तो प्रसाद लेके बैठे। तो जैसे ही अभी बंबई की दौड़ धूप से त्रस्त दयामृत प्रभु को देख लिया किसी ने, तो सारी थकान वैसे ही दूर हो जाती। तो देखते गए ये कौन आदमी है, और पूछा जाके हु आर यू, यही प्रश्न हु आर यू। उन्होंने फिर जब बोलना शुरू किया, पहले देख के ही आधा वो परिवर्तित हो गए थे, जब सुना उनकी वाणी सुनी तो फिर वो प्रोग्राम अरेंज करना शुरू किए। तो उस समय दयामृत प्रभु आते थे तो केवल स्वरूप दामोदर प्रभु पकड़ पकड़ के अपने फ्रेंड्स को लेके आते थे और बोलते थे कि ये इतना एजुकेटेड आदमी, और वहाँ पर केवल कोई वो सिडनी में बीकॉम करने वाले बीएससी करने वाले घूमते फिरते थे। बोले ये जिसने एमबीए किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, और उसके पहले इसने इंजीनियरिंग किया है, और इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के यहाँ पे हमको प्रीचिंग करने आ, हमारे पास टाइम नहीं है, पकड़ पकड़ के वो लेके जाते थे लोग। और फिर उन्होंने इस्कॉन का कीर्तन सुना था जुहू में स्वरूप दामोदर प्रभु, तो पूछे कि आप कीर्तन क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पर कीर्तन के वॉल्यूम पे मनाई की गई थी। तो फिर वो उन्होंने यू लाइक कीर्तन ना, सो प्लीज कम टू अवर टेम्पल। तो इनको तब पता लगा कि इधर मंदिर भी, इनको लगता है ये जुहू से आते हैं ये, तो पता लगा इधर मंदिर भी है। तो सोचिए वो दयामृत प्रभु जो इतने हफ्ते महीना साल तक वो आते गए उस कॉलेज में, तो एक स्वरूप दामोदर प्रभु उनको मिला, और वो एक स्वरूप दामोदर प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को प्रीचिंग किया, मुझे, मेरी सिस्टर, मेरी मदर। तो हम अगर कनेक्शन देखें एक एक का कहाँ कहाँ से निकलता है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कहाँ इनकी डॉटर इन लॉ का लंदन में कैम्ब्रिज में है, वहाँ से इनको इन्फ्लुएंस कर कर, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं कि हम उसका कनेक्शंस निकालते रहें। तो इंद्रिय भोग में भी ये सारे कनेक्शंस हैं बाहर के जो हमको लगाए हैं गलत कामों में। तो अभी हमारी धारणा चेतना ये होनी चाहिए कि हम याद करें उन लोगों को, उन भक्तों को, उन सूत्रों को जिन्होंने हमें अब तक हम जो पहुंचे हैं भक्ति में, जहाँ तक जितनी भक्ति कर पाए वो लोग सब कौन रहे, और उनके प्रति जब हमारी कृतज्ञता और बढ़ती रहेगी, जैसे राधानाथ महाराज ने कहा कि दैट ग्रेटफुल हार्ट इज द बेस्ट ऑफरिंग टू श्री राधा मदन गोपाल जी। हाँ
जब महाराज पहली बार नासिक यात्रा में आए थे इधर सब, ये परमोस प्रभु ने मुझसे शेयर किया हुआ है एक्चुअली, और बाकी सब जो पहले आए थे भक्त यहाँ नासिक में, तो वो श्यामानंद प्रभु ऐसे चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कौन आएगा, तब परमोस प्रभु भी वाइट में थे, सैफरन नहीं हुए थे, तो तब श्यामानंद प्रभु को ये दिखे सामने जाते हुए परमोस प्रभु, तो उन्होंने बुलाया महाराज कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते, और महाराज ने उनको बोला कि आपको नासिक में जाके प्रचार चालू करना है। एक्चुअली उसके पहले 3 अटेम्प्ट हो चुके थे नासिक में प्रचार चालू करने के लिए, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे एक्चुअली, क्योंकि इधर बहुत सारा कर्मकांड भी ऑलरेडी है और वैसे भी मोड ऑफ पैशन कम होने के कारण किसी को तकलीफ ही नहीं हो रही, जो मैंने प्रीचिंग के लिए जो पॉइंट सूत्र मिलना चाहिए वो भी मिल नहीं रहा था। तो परमोस प्रभु जब पहली बार आए तो सिर्फ महाराज की सेवा ये हेतु से वो नासिक में आए, तब वो किसी को भी नहीं जानते थे, ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस भी मिला था बम्बई से कि जाओ इनके घर जाके रुको और वहाँ से प्रचार चालू करो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वो ऐसे ही जब दो दिन आते थे नासिक में पहले, तो सिर्फ दो दिन गंगा घाट में यहाँ बैठ के यशवंत पटांगण में मृदुंग बजाते बैठते थे और हरे कृष्ण कीर्तन करते थे शाम को। मैंने ऐसा भी उनको हुआ है कि उनके सामने किसी ने पैसा भी फेंका है। एंड वो सब जब चालू था तो पहले जो भक्त आए उसमें से अपने श्रीजीव प्रभु है कि श्रीजीव प्रभु, बाद में सव्यसाची प्रभु और प्रेमरूप प्रभु, ये तीन लोग और उनके साथ तीन लोग ऐसे फिर उनके सामने बैठने लगे उधर, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि यहाँ कोई ऐसा बहुत सारा एजुकेटेड क्राउड आता नहीं है। गंगा घाट में अभी हम भी किसी यहाँ पूछे तो कितने लोग कितने बार गए, मेरे ख्याल से मैं इस्कॉन में आने के बाद ज़्यादा बार गया हूँ, उसके पहले उधर कौन जाएगा, ऐसा था लिटरली। तो वैसा जब उन्होंने बीज बोया तो अभी ये अभी फल अपने को मिला है कि लिटरली मैंने कोई भी मालूम ही नहीं किसको मिलना क्या क्या करना। फिर धीरे धीरे वो बुधवार पेठ में कार्यक्रम होने लगा, फिर कोई तो उधर ज्वाइन हो गया, फिर मेरी में शिफ्ट हो गया, फिर मेरे पिताजी वहाँ ज्वाइन हो गए, फिर उन्होंने नासिक रोड में एक प्रोग्राम चालू किया वहाँ कोई तो ज्वाइन हुआ, एक उजर में प्रोग्राम किया उसमें अपना पूरा बागुल फैमिली ज्वाइन हुआ, ऐसा फिर बढ़ते बढ़ते गया। तो वो जो पहले दिन थे जैसे आपने बोला कि
राधा गोपीनाथ मंदिर, शुरुआत राधा गोपीनाथ मंदिर की एक छोटे से कमरे से हुई, छोटा सा कमरा, और महाराज बताते थे कि वो कमरा भी पूरा चूहों से ज्यादा भरा हुआ रहता था, बड़े बड़े चूहे, रैट इन्फेस्टेड स्मॉल डंजन महाराज बोलते। वहाँ से शुरुआत हुई और ये सब कुछ फैला। इसलिए कहते हैं कि इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति का जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट आध्यात्मिक संसार में नहीं, वहां पे वो स्वीटनेस है, वहां की भक्ति की स्वीटनेस है, मधुरता ये सब है, लेकिन जो एडवेंचर एक्साइटमेंट है ना वो इस भौतिक संसार में। इसलिए भगवान भौतिक संसार में बार बार आते रहते हैं वो एडवेंचर एक्साइटमेंट को अनुभव करने के लिए। इसलिए श्री राधा मदन गोपाल जी यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनके लिए अजीबोगरीब एक्साइटमेंट पैदा करते रहें, हमको मधुरता से उनकी सेवा करनी है, लेकिन भगवान बहुत फेमस है, भगवान श्री कृष्ण, इसलिए बोलते हैं कि वो त्रिभंग में ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं ना, तो कोई भी काम सीधी तरीके से नहीं करा के, वो टेढ़े तरीके से ही करा के लेकिन हमको सीधा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज़ ओनली नेत्र राधानाथ स्वामी महाराज की।